من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومولانا أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم: من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. صلوات پڑھنے والا، عزیزان محترم، ہم نے گزشتہ روز جو گفتگو کی اس کو ری کیپ کرتے ہوئے تھوڑا سا چند نکات اس کو دوبارہ میں آپ کی خدمت میں بہت مختصرا، اور پھر انشاءاللہ جو آج مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے اس کو میں جاری رکھوں گا. گزشتہ جو ہمارا اصل ٹاپک تھا وہ یہ کہ جس وقت ہم ثواب کی بات کرتے ہیں، اجر و ثواب یا ریوارڈ کی بات کرتے ہیں، تو یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اس کو سمجھیں کہ دا ریلیشن شپ بٹوین دا ریوارڈس آف دا ڈے آف ججمنٹ اینڈ آور عمل اینڈ آور ڈیڈس. اینڈ یسٹرڈے آئی آلسو mentioned very important Quranic verse in which Allah subhanahu wa ta'ala says, khalaqal mauta wal hayata, that I created death and life, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, so that I could put you on trial, whosoever and who from you is has a better amal, so who is good in his amal or who is better in his deeds. So basically there is a very very important message we have in this Quranic verse, that Allah subhanahu wa ta'ala says that I am testing you, I am putting you on trial, I want to see that who is really paying attention to the qualitative aspect of your deeds. One aspect is quantitative, that I am praying a lot, I am fasting a lot, I am going for Hajj or Ziyarat a lot, but this is just a quantity. But we have to pay attention to the quality of our deeds. So when quality is important, then it means that quality, we should pay attention to the quality of our amal. And then we need to know that how we can give more quality to our deeds. For example, if I am praying, so in my prayer, how I can make my prayer more qualitative? So I need to really pay attention to the meanings of Quranic verses I am reciting in the prayer. I have to have attentiveness, I must be very focused, and then I have to relate this prayer to my own self-purification as well. For example, when Quran says inna salata tanha anil fuhsha wal munkar, it means that Quran is saying that prayers are preventing us from wrongdoings. So when I am praying all the time, 5 times I am praying, but I see that this prayer is not preventing me from the wrongdoing, so it means that my ibadat is not qualitative. So this is why when it was asked from Imam Jafar Sadiq alayhi salam, this is a beautiful explanation of our sixth Imam. When someone asked Imam Sadiq alayhi salam that what is the meaning of this ayah, what does it mean when Quran says la yabluwakum ayyukum ahsanu amal, so what is the meaning of ahsan amal? So Imam says, so I'm just try to recite Arabic as well. Laysa yani aksru amal. It doesn't mean that the amal should be quantitative. Aksar amal is not there. So aksar we already understand in Urdu. Imam said, no, this is not the meaning, it's not aksar. But Imam says, aswabakum amala. Who is better than his or her amal? So you know that betterment and the quality of amal is important. And then someone asked, what is the meaning of aswaba? What is the meaning of quality of amal? Then Imam alayhi salam mentioned three or four very important points. Imam says, innamal asaba. So the meaning of quality of amal of or the betterment of amal is al asaba khashiyatullah. So one thing is that you must have khashiyatullah. You must have fear of God in your life. And then second Imam says, wa niyyatu sadiqa. You must be very truthful in your niyyat. You must be very truthful in your intention. So you know that 2 points Imam says that khashiyatullah. So I will explain later on. And then Imam said, our niyyat should be khalis. Our niyyat should be only and only whatever we are doing, it should be for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And then Imam alayhi salam says, very interesting, Imam says, al-ibqa'u al-amale. So what is the meaning of ibqa? So we can little bit understand, we use this in Urdu as well. But ibqa means the kisi amal ko baqi rakhna. So when you are retaining something, so retention of your amal. So Imam says that al-ibqa'u al-amal, that retaining your amal, in starting the amal is easy. So maybe you are starting something from today and then you say that from now I'm going to do this good work. But it's very difficult to continue this amal. Continuation is always difficult. Maybe sometimes you are in a good mood, sometimes you have a good environment, so you are going to start something good. But how you can continue this one? And also Imam says, until you purify your amal. So amal is easy to start, but how you can purify your amal, how you can make your amal more khalis, this is according to our sixth Imam, that it is ashaddu min al amal. It is more difficult in amal in itself. So this is one point. And then Imam again explains the meaning of ikhlas. So this is very beautiful hadith that, so what is the meaning of ikhlas? Because for example, all of us may consider ourselves that our amal is khalis. So we have a devotion in our amal. So there is a khulus in our amal. And we are doing this one for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. But Imam gives a very important criteria. Imam says, so first I will just explain it, then I will read this hadith as well. So you know what, whenever we are doing something good, so this is part of our fitrat, this is part of our inborn nature, that we really want other people to appreciate us. So if, for example, I'm doing something good, so I'm always looking at your appreciation. But we also know that people are really not appreciative. People are not thankful to you. Sometimes you are serving your community, but people are not thankful to you. So first of all, it is extremely important for us to really, we should learn to appreciate others. Even when we have family life, we are in the family, sometimes we are not appreciating each other. We are not appreciating our wives. They are doing great job, but we don't appreciate them. They are not appreciating us. So first of all, our society should be welcoming society. Our society should be appreciative, and we should really learn. But this is the responsibility for other people, those who are, but sometimes really everyone, we have experience. I have my own experience. For example, I did something good, but people are really forgetting it, or sometimes they are naming your contribution to their name. So they are considering it, they are not acknowledging whatever you have done. So the first thing that we need to really learn here, that how we can be thankful to other people. And then I have already explained a lot in my different majalis that what is the difference between appreciation and, for example, if we are not appreciating something. And this is why Allah Ta'ala says that we should be thankful to the blessings of Allah Subhanahu Wa Ta'ala. If we are not thankful to the blessing of Allah Subhanahu Wa Ta'ala, then there will be there are moral and ethical issues, and then we cannot purify ourselves. So I'm not going into the detail, but the one who is doing good, the doer of the work. So what is my responsibility? So your responsibility is to appreciate someone who is doing good. But what is my responsibility? My responsibility is that I should not really rely on your appreciation. It is extremely important for me, because the more I have high expectations, the more I will suffer, the more I will be like depressive. And you know, all the time this is happening. If you just see your family life, your social life, whatever you have, you will see that most of our problems are because of our high expectations. So if we are lowering our expectations, then this will be very helpful for us. And then, so Imam alayhi salam says, when you are doing something good, so you are not expecting appreciation from other people, but you are only expecting appreciation from your Allah, from Allah subhanahu wa ta'ala. For if I am doing something good, it means that I just want that my Allah should praise me. I don't care that people are praising me or not. So this aspect is extremely important if we want to evaluate our amal, whether my amal is for the sake of God or not. Then I should see whether only and only I am considering the appreciation of Allah subhanahu wa ta'ala, or I am just expecting other people to appreciate me. So this is what Imam alayhi salam says. When we see this issue, this is extremely important nowadays. According to my experience in different communities, we have really serious issue in our youth, in our children. Now the era is different. When they go outside colleges, universities, whatever the environment they have, there is an environment of environment of fun and entertainment. And I see that in religious issue, we are also looking for fun. We are looking for the speakers who are really providing us entertainment. But the seriousness in understanding the religious issues, we see that we don't have. And other problem that we have, especially in our youth, so I am basically facilitating them. I am not just criticizing. I am saying that we see in different communities, this is my experience, that if I want to do something in the community or maybe any religious work, I am only doing if I am able to project my work, if people are able to see this one. If I see that nobody is there to see me, so then I will not take interest in it. This is the most dangerous thing we already have in our youth, that if people are able, if there is a projection, if I can really, people can really see that whatever I have done, this one. But if, for example, so you know that in Islam, sometimes if we are doing for the sake of God, so we are always hiding and we are doing something in privacy, and we know, want that people should not know that I have done this one. But the current youth, they really need to learn this one. And especially I see, for example, now we have another issue, the leadership. So once we are becoming leader of the community, then when we are becoming leader of the community, then we are becoming heedless of ourselves, neglectful of ourselves. Then we will not think about our self-purification. We are always trying to be a leader in the community. So this aspect is always very important. And I'm just, sometimes I talk to my youth, I say that I don't see any serious program. Where is your learning? I don't see that you are increasing your knowledge. So what kind of program? So I'm always saying that you have to have study circle, you have to have discuss different issues related to our usul-e-deen, our aqaid. So I need to see, but if you ask now any question about your aqaid, about tawheed, about nabuwat, about imamat, about wilayat, you will see that they will not be able to give answer because we are not paying attention to this one. So this aspect is, again, I think that what I am going to discuss is important for us. Please recite salawat. कल की मजलिस में हमने इसके ऊपर भी ज़िक्र किया और ये भी बात की कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर गिरिया करना जो है क्वालिटेटिव अप्रोच के साथ, जब कुरान हमें ये कहता है कि हमारा अमल जो है वो क्वालिटेटिव होना चाहिए, उसको कैफियत के लिहाज से अच्छा होना चाहिए, तो आंसू बहाना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए और शुहदाए करबला के लिए, और आंसू बहाना हमारे किसी रिलेटिव के लिए जो इस दुनिया से जा चुका है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और जब तक हमें चीज़ों की फ़िलॉसफ़ी के बारे में नहीं पता होगा, जब तक हमें चीज़ों के पीछे विजडम के बारे में पता नहीं होगा कि जो अहकाम हैं इस्लाम के उसके पीछे एक हिकमत है, उसके पीछे एक विजडम है, अगर हमें उस विजडम का इल्म नहीं होगा तो हम कभी भी उसके जो रिक्वायरमेंट्स हैं हम उसको पूरा नहीं कर सकते। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का मतलब ये है कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो टीचिंग्स हैं उससे अपने आप को वाबस्ता करें और अपने आप को, अपने आंसुओं को यूज़ करें ताकि हम अपने आप को प्योरीफाई कर सकें, ताकि हम अपने अंदर चेंज ला सकें। इमाम हुसैन के रास्ते में बहने वाले आंसुओं और आम दुनिया के लिए बहने वाले आंसुओं में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लिहाजा इन आंसुओं की कदर व कीमत को जानना भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अगर ये आंसुओं की कदर व कीमत, जो वर्थ, जो वैल्यू है और जो हमें तौफीक अल्लाह ताला ने दी है इस इंस्टीट्यूशन के ज़रिए से, तो इसका मतलब ये है कि आंसू बराए आंसू नहीं होना चाहिए। इमाम हुसैन के लिए हम सिर्फ ऐसे ही आंसू ना बहाएं जिस तरह हम दुनिया के लिए बहाते हैं, जिस तरह हम अपने मरने वाले के लिए बहाते हैं। इमाम हुसैन के लिए आंसू बहाने में एक फ़र्क होना चाहिए कि जिसका ताल्लुक़ हमारी तब्दीली से भी है, जिसका ताल्लुक़ हमारी इस्लाह से भी है, जिसका ताल्लुक़ इमाम हुसैन के मिशन को समझने और उनकी इलाही तहरीक में शामिल होने से भी है। सलावत पढ़ दीजिए एक मरतबा। तो जो हमने इंतहाई इम्पॉर्टेंट जो मैंने बात की कि इंशाल्लाह आप ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर गौर करें, वो ये कि ये जो दुनिया और जो आखरत है ये दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं इस्लाम के अंदर। जैसे आपको पता है कि क्रिश्चियनिटी में हमारे यहाँ एक इशू है जोहद का और रहबानियत उसके मुकाबले में है, यानी रहबानियत में उनके नज़दीक ये है कि अगर हम फ़र्ज़ करें कि दुनिया को छोड़ देना, माफिया को, दुनिया और माफिया को छोड़ देना और सिर्फ जो है वो इबादत करना, और जबकि इस्लाम इसकी शिद्दत से मजम्मत करता है। इस्लाम कहता है कि दुनिया को भी रखें और आखिरत को भी रखें, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट क्या है? उनका कॉन्सेप्ट ये है कि हम या तो दुनिया को रख सकते हैं, या तो हम दुनिया के लिए काम करें, दुनिया की मईशत के लिए काम करें, या हम जो है वो आखिरत के लिए काम करें। लेकिन कुरान ये कहता है, जबकि इस्लाम ये कहता है कि हम अपनी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं, हमारी जो ऑब्लिगेशंस हैं, हम उनको भी पूरा करें और उसके साथ साथ हम आखरत के ऊपर भी तवज्जो रखें। तो जो बात हमने कल जिसकी तरफ इशारा किया वो ये था कि आखरत जो है वो ज़हूर और मैनिफेस्टेशन है इस दुनिया के हमारे अमल की। हम जो भी काम यहाँ पर करते हैं वो दरअसल मैनिफेस्टेशन होगी आखरत। ये नहीं है कि अलग से कोई चीज़ वहाँ पर पहले से खल्क हुई है, बल्कि इसी दुनिया में इसी का बातिन जो है एक ही हकीकत के दो रुख हैं, एक ज़ाहरी रुख है और एक बातनी रुख है। तो कुरान की आयत ही कहती है कि लकद कुनता फी गफलतिन मिन हाजा, के क़यामत के दिन हमें ये कहा जाएगा कि तुम लोग गफलत का शिकार थे और फिर फकशफना अनका गिता का, और आज हम ये नकाब और ये तुम्हारी जो वेल है हम इसको जो है तुम्हारे चेहरे के, तुम्हारी आंखों के सामने से इस पर्दे को हटाते हैं। फबसरा का अल्योम हदीद, तो इसके बाद तुम देखने के काबिल होगे। तो आपको मालूम है कि इंतहाई अहम नुक्ते की तरफ हमने कल इशारा किया कि अल्लाह ताला, देखें यहाँ दो चीज़ें हैं, एक चीज ये है जिसको हम रियलिटी कहते हैं, जिसको हम हक कहते हैं, जिसको हम बातिल कहते हैं। तो अब आप जरा सोचें कि फर्ज करें जब हम कहते हैं कि हमें ट्रुथफुल होना चाहिए, हमें ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, हमें एक अच्छा इंसान होना चाहिए, हमें दूसरे को तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए, हमें दूसरे को अज़ियत का बाइस नहीं बनना चाहिए, हमारे लोगों को शर महसूस ना करें हमें, तो दूसरी तरफ क्या है कि बुराई है और झूठ बोलना है। तो अब आप एक चीज़ आपके सामने हकीकत है कि हमें अच्छा काम करना चाहिए। तो कुरान ये कहना चाहता है कि तुम्हारी सामने जो दो हकीकतें हैं, एक सच्चाई है और एक फरेब है और झूठ है, तो सच्चाई के ऊपर पर्दा नहीं पड़ा हुआ, पर्दा तुम्हारी आंखों के ऊपर पड़ा हुआ है। ये जब पर्दा हटेगा तो ये हकीकत तो खुद अपनी जगह पर मौजूद है। अल्लाह ताला ये कहता है कि मैं नूर उस समावात वल अर्ज हूं। जब अल्लाह ताला नूर उस समावात वल अर्ज है तो फिर वो नूर हमें नजर क्यों नहीं आता? क्वेश्चन तो है सबसे बड़ा कि जब अल्लाह ताला अपने आप को नूर कहता है तो हमें वो नूर नजर क्यों नहीं आता? बिल्कुल इसी तरीके से जैसे ये लाइट हमारे सामने है, तो ये लाइट अगर हम फर्ज करें कि नाबीना हूं तो हमें ये लाइट नजर नहीं आएगी। तो जब हमें ये लाइट नजर नहीं आएगी तो इस लाइट के ऊपर पर्दा नहीं पड़ा हुआ कि हम कहें जी हम इसको देख नहीं सकते। पर्दा हमारी आंखों पे पड़ा हुआ है और हम इस लाइट को नहीं देख सकते। सलावत पढ़ दीजिए एक मर्तबा। इसी तरीके से कुरान ये कहना चाहता है कि क्यामत के दिन जो है हकाइक आज भी तुम्हारे सामने मौजूद हैं, लेकिन चूंकि तुम्हारे दिल पर पर्दा पड़ा है, तुम्हारा पॉल्यूटेड हार्ट है, तुम्हारी आंखों पर पर्दा पड़ा है, आज हम इसको जो है तुम्हारी आंखों के सामने से हटा रहे हैं। तो हर चीज इस कायनात के अंदर मौजूद है, हर चीज। और यहां तक कि हम जब गैबत की बात करते हैं, इमाम जमाना अलैहिस्सलाम की गैबत की बात करते हैं, तो उसमें भी इमाम गायब नहीं है। अगर आप इन डेप्थ एनालिसिस करें तो आपको ये मालूम होगा कि हम ये समझते हैं कि इमाम गायब हैं। इमाम गायब नहीं है, हम खुद इमाम से गायब हैं, या हम खुद हिजाब में हैं, अपने हिजाब की वजह से हम इमाम को नहीं देख सकते। वरना इमाम हाजिर और नाजिर हैं और वो हमेशा मौजूद है, हमारे आमाल को देखते हैं जिस तरह अल्लाह ताला हमें देखता है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है इसको मैं समझता हूँ कि समझने की ज़रूरत है। और यही वो मकाम है कि जहाँ पर अगर आप पाकिस्तान में टेलीविज़न वगैरह देखते हों, टॉक शो देखते हों, तो वहाँ कसरत के साथ जो अहले हदीस के उलमा हैं वो आपके तसव्वुर वसीला के तसव्वुर पर आज इसी जगह पर एतराज़ करते हैं। और मैं इसी के ज़रिए से, इसी प्लेटफॉर्म से मैं आज इसका जवाब भी देना चाहता हूँ। और ये जो सवाल उठाया जाता है कि अल्लाह को किसी वसीले की ज़रूरत नहीं है, और इसके लिए जो इस्तेदलाल किया जाता है वो क्या है, इंशाल्लाह अगर आप चाहें तो मैं आपको क्लिप भी फॉरवर्ड कर सकता हूँ, तो आप देखें कि किस तरीके से आप अहले हदीस के उलमा जो हैं इस वसीले के मसले को क्रिटिसाइज करते हैं और कहते हैं, और ज़ाहिर है कि वो कुरान की आयात पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला जब ये कहता है कि मैं तुम्हारी शह रग से भी ज़्यादा करीब हूँ, अल्लाह ताला जब ये कहता है कि वालमू अन्नल्लाह यहूलो बैना मरही व कल्बहु, कि अल्लाह ताला तुम्हारे कल्ब और रूह से भी ज़्यादा करीब है, यानी इतने तुम भी अपने कल्ब के करीब नहीं हो जितना अल्लाह ताला तुम्हारे करीब है। तो वो ज़ाहिर है कि सवाल तो आज हमारे जहन में भी होगा कि जब अल्लाह ताला हमारे इतना करीब है तो फिर हमें किसी और को वसीला बनाने की क्या ज़रूरत है, हम डायरेक्ट अल्लाह ताला से क्यों नहीं मांगते। लिहाजा वो जो मसलन अहले हदीस के उलमा हैं, अब वो मिसाल क्या देते हैं, आप देखिए मिसाल कितनी दिलचस्प है। वो मिसाल ये देते हैं कि फ़र्ज़ करें आप मेरे पास बैठे हैं, मैं आपके साथ गुफ्तगू कर सकता हूँ, मैं आपके साथ दर्द दिल बयान कर सकता हूँ, मैं आपसे मदद मांग सकता हूँ, मैं बजाय इसके कि आपसे मदद मांगूँ मैं 2 मील दूर जाता हूँ और किसी शख्स को पकड़ के लाता हूँ और कहता हूँ कि मेरी तरफ से जो है मेरा और इसके दरमियान रابطہ बरकरार कर दो। तो अब आप देखें कि वो ये कहते हैं कि जब अल्लाह ताला खुद यहाँ पर मौजूद है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो गलतफहमी है वो ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह ताला को वसीले की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह को वसीले की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें वसीले की ज़रूरत है। दो किस्म की क्लोजनेस होती है, बहुत तवज्जो कीजिएगा, दो किस्म की क्लोजनेस होती है, एक मटेरियलिस्टिक क्लोजनेस होती है और एक जो है वो स्पिरिचुअल क्लोजनेस होती है। मटेरियलिस्टिक क्लोजनेस का मतलब ये है कि अगर आप मेरे करीब हैं तो मैं भी आपके करीब हूं, अगर मैं आपसे दूर हूं तो आप भी मुझसे दूर हैं, अगर ये दीवार मेरे करीब है तो मैं भी दीवार के करीब हूं। लेकिन जो स्पिरिचुअल क्लोजनेस होती है, हो सकता है कि आप मेरे करीब हो लेकिन मैं आपसे दूर हूं, हो सकता है। सलावत पढ़ दीजिए एक मरतबा। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर अल्लाह ताला हमारे करीब है तो इसका यह तो मतलब नहीं है कि हम भी अल्लाह ताला के करीब हैं, इसलिए कि हम अपने गुनाहों की वजह से, हम अपने हिजाब की वजह से, हम अपने आलूदा कल्ब की वजह से, हम अपनी मासियत की वजह से, हम अल्लाह ताला से दूर हैं। और इसीलिए कुरान मजीद में अल्लाह ताला ये फरमाता है कि उलाइका युनादूना मिन मकानिन बईद। आप हैरान कुन हद तक आप देखें कि कुरान की आयात क्या कह रही हैं, जब अल्लाह ताला इतना करीब है तो अल्लाह ताला हमें कुरान में कह रहा है कि ये लोग जो अंधे उठाए जाएंगे, अल्लाह ताला कहता है कि मैं इनको बहुत दूर से आवाज़ दूंगा। यानी क्या मतलब, अल्लाह ताला तो बहुत करीब है, अल्लाह ताला दूर से आवाज़ क्यों देगा? इसका मतलब है कि स्पिरिचुअल क्लोजनेस जो है वो एक अलग चीज़ होती है कि आप अल्लाह ताला से इतना दूर हैं तो अल्लाह ताला इसको इस तरह बयान कर रहा है कि चूंकि आप मुझसे बहुत दूर हैं लिहाजा मैं आपको दूर से आवाज़ दूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस वक्त हम वसीले की बात करते हैं तो उसी के जवाब में 1400 साल पहले, बहुत तवज्जो कीजिएगा, 1400 साल पहले जनाब सैयदा जहरा ने इन्हीं अहले हदीस के उलमा का जवाब दिया है। और आप क्या फरमाती हैं, वो तारीखी जुमला आपका है और वो ये है कि अहमदुल्लाह, मैं हमद बजा लाती हूं अल्लाह की। कौन अल्लाह? अल्लजी बे अजमत ही व नूर ही, वो खुदा के जिसकी अजमत की वजह से और जिसके नूर की वजह से, अल्लजी बे अजमत ही व नूर ही यब तगी मन फिस समावात वल अर्दे, कि जो कुछ भी जमीन और आसमानों के अंदर है, यब तगी मन फिस समावात वल अर्दे अल वसीला, वो वसीले को तलब कर रहा है। इस कायनात का जर्रा जर्रा जो है वो अल्लाह तक पहुंचने के लिए एक वसीले का तलबगार है। वह नहनु वसीलतहु, और हम हैं उसके लिए वसीला। हम यानी हम हैं कि जो तुम्हारे हार्ट को प्योरीफाई करेंगे, हम हैं कि जो तुम्हें इस काबिल बनाएंगे कि तुम अल्लाह के करीब हो सको। अब यहां से जाहिर है हमारे लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वसीले का जो कॉन्सेप्ट खुद हमारे अंदर है वो भी तब्दील होने की जरूरत है। आइम्मा के वसीले होने का ताल्लुक ये है कि हमारा इमाम मासूम से राब्ता ऐसा होना चाहिए कि जो हमें इस काबिल बना दे कि हम खुद को अल्लाह के साथ कनेक्ट कर सकें। लेकिन अगर हम वहीं पर स्टक हो जाते हैं तो उसके नतीजे में आजकल जो मजालिस में मसलन हमारे यहाँ होता क्या है कि हम साल हर साल से जिसको हम फजाइल कहते हैं, मसलन हम फजाइल, जाहिर है फजाइल तो होने चाहिए लेकिन आप आगे भी तो कभी बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। मेरा सवाल ये कि हम ठीक है कि हम आइम्मा के फजाइल बयान करते हैं, अंबिया के फजाइल बनते हैं, हमारे अकीदे में भी बेहतरी आती है, हमारे ईमान की तकवीत का बाइस बनता है, लेकिन मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ कि हम इस वक्त किस सिचुएशन से गिरफ्तार हैं। फर्ज करें कि हमारे पास बड़ा ही खूबसूरत एक बाग है, बहुत ही शानदार हमारे पास बाग है और हम सारी जिंदगी उस बाग की तारीफ करते रहे लेकिन हमें खुद कभी तौफीक ना हो कि उस बाग के फलों से बहरामंद हो सकें और लुत्फंदोज हो सकें। सलावत पढ़े एक मरतबा। बाग में हसीन फूल हैं लेकिन आप उसकी खुशबू से कभी भी बहरामंद नहीं हो सकते। तो हमारी मिसाल जो है वो इस तरह से है कि वसीले का मतलब ये नहीं है कि हम नाअहल हैं और अल्लाह ताला के पास वो हमारी शफात कर देंगे, बल्कि वसीले का मतलब ये है कि हमारे पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास ज्यादा बेहतर ग्राउंड्स हैं कि हम अपने आप को प्योरीफाई कर सकें। हमारे पास नहजुल बलागा मौजूद है, हमारे पास सहीफ़े सज्जादिया मौजूद है, हमारे पास अहले बैत की तालीमात मौजूद हैं। ये है मतलब इस वसीले का। सलवात पढ़ दीजिए एक मरतबा। तो कुरान ये कहता है कि यौम तुबलस सराइर, जो आखरत है, जो क़यामत है, वो असरार को फाश करने और मैनिफेस्टेशन है इस जो भी इस दुनिया में हमें, यानी क़यामत में बातिन की हुकूमत होगी, यहाँ पर इस दुनिया में ज़ाहिर की हुकूमत है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में हमें इस बात की तरफ इशारा करता है कि देखें, इस दुनिया में अगर हम थोड़ा सा गौर करें, इस दुनिया में हमारी तवज्जो ज़ाहिरी असबाब पे होती है, जो अपेरेंट कॉजेज़ हैं हमारी तवज्जो उसके ऊपर होती है, यानी हम फौरन रिलाय करने लगते हैं। मसलन कोई अगर हमारी कम्युनिटी में है तो हम ये सोचने लगते हैं कि ये शख्स हमारी, जब हम पर बुरा वक्त आएगा तो ये हमारा साथ देगा, जब हमें किसी वक्त पैसे की ज़रूरत होगी तो इससे हमें मदद मिल सकती है। या मिसाल के तौर पर हम मेडिकल स्टोर जाते हैं, हम दवाइयाँ लेते हैं, दवाइयों के बारे में हम सोचते हैं कि इससे हम जो है वो सेहत याब हो जाएंगे। अल्लाह ताला ये कहना चाहता है कि ये ज़ाहिरी असबाब हैं। इस दुनिया में इंसान इन ज़ाहिरी असबाब में इतना खो जाता है कि वो असल सबब को देखने के काबिल नहीं रहता। वो असल के जिसने आपको क्योर करना है, वो असल के जो असल में हीलर है, वो जो शफा है आपके लिए, वो आप उसको नहीं देख सकते। लेकिन अल्लाह ताला कहता है कि क़यामत में बरअक्स होगा, क़यामत में ये सारे असबाब दूर हट जाएंगे और लोग मेरी कहारियत को और लोग मेरी ताकत और उसके जलवों को देखेंगे, ये फ़र्क होगा। लेकिन अल्लाह ताला ये कहता है कि सिर्फ क़यामत से इसका ताल्लुक नहीं है। अगर हम अपनी बसीरत की आँखें और कल्ब की आँखें खोलें तो हम इस दुनिया में भी इन ज़ाहिरी और दुनियावी कॉजेस के पीछे वो असल कॉज जो मौजूद है कि जिसकी वजह से इस पूरे कायनात का निज़ाम चल रहा है, हम उसको देखने के काबिल हो सकते हैं। तो इस लिहाज से अगर हम देखें कि ये दुनिया जो है वो ज़ाहिर की दुनिया है और क़यामत जो है वो इसी दुनिया का बातिन है जिसको हम देख नहीं सकते। अब कुरान मजीद की एक बड़ी अच्छी आयत और बड़ी ज़बरदस्त आयत मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, और मैंने शुरू पहली मजलिस में ये कहा था कि हमारी मजालिस में कुरान को मरकजी हैसियत दिया जाना चाहिए। हमारे पास कोई जवाब नहीं है कि हमारी ज़िंदगी में, हमारी स्पीचेस में, हमारी मजलिस में कुरान एब्सेंट हो और कुरान को आप ना देख सकें। आप जो भी बात करते हैं उसमें कुरान को सेंट्रल हैसियत होनी चाहिए और उससे आप इस्तेदलाल करें। तो कुरान ये कहता है, देखें, अगर आप इस दुनिया में किसी मुजरिम के बारे में जानना चाहें तो आपको बहुत सी दफ़ा आपको चेहरे से तो पता नहीं चल सकता कि कौन मुजरिम है और कौन मुजरिम नहीं है। लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह ताला क्या फरमाता है? अल्लाह फरमाता है यूरफुल मुजरिमूना बेसीमाहुम, के मुजरिम अपने चेहरों से पहचाने जाएंगे। वो दुनिया के जहां पर मुजरिम पहचाने नहीं जा सकते चेहरों से, क़यामत के दिन अपने चेहरों से जो है वो पहचाने जाएंगे। सलवात पढ़ दीजिए एक मरतबा। फिर जब अल्लाह ताला कुरान में, जैसे कि हमने कल कहा, मैं एक बड़े बारीक नुक्ते की तरफ आपको लाना चाहता हूं कि अल्लाह ताला जब कहते हैं कि मन काना फी हाज़िही आमा, कि जो इस दुनिया में नाबीना है वो आखरत में भी नाबीना होगा, तो अल्लाह ताला से वो शख्स पूछेगा कि परवरदिगारा, मैं दुनिया में तो देख सकता था, मेरी तो आंखें थी, मेरी निगाहें थी, तो मुझे आज अंधा क्यों उठाया गया? तो अल्लाह ताला ये कहेगा कि वो आंखें कि जो इस दुनिया में थी वो आखिरत में वर्क नहीं करेंगी। ये जो ज़ाहिरी आंखें हैं ये आखिरत में वर्क नहीं करेंगी, बल्कि इस दुनिया में अपने दिल की आंखों को खोलकर हकाइक को देखने के काबिल होना है। अल्लाह ताला ये कहता है कि मेरी आयात तुम्हारे सामने थी, अंबिया की तालीमात तुम्हारे सामने थी, आइम्मा तुम्हारे सामने थे, कुरान तुम्हारे सामने था, मेरे मोजज़ात तुम्हारे सामने थे, सब कुछ होने के बावजूद जो है कि तुम्हारी आंखें उनको देख नहीं रही थी, तो इसका मतलब यह है कि तुम दुनिया में भी अंधे थे, इसीलिए तुम आखिरत में अंधे उठाए जा रहे हो। सलवात पढ़ दीजिए एक मरतबा। बस अजीज़ाने मोहतरम, अब जब, अब आप फौरन ये कहेंगे कि अगर कयामत में कोई अंधा होगा या नाबीना होगा तो फिर ये जो मुजरिम है, ये जो गुनाहगार हैं, ये जो कुफार हैं, ये जो मुशरिकीन हैं, ये फिर किस तरह चीज़ों को देखेंगे। अब देखें इसके पीछे कितना गहरा फलसफा है। अब मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जा सकता, लेकिन आप थोड़ा सा उसके ऊपर गौर कीजिएगा कि जो ये अंधे और नाबीना उठाए जाएंगे, ये ना जन्नत को देख सकेंगे, ना अंबिया को देख सकेंगे, ना अहले बैत को देख सकेंगे, ना फरिश्तों को देख सकेंगे, लेकिन जिस चीज़ को देख सकेंगे वो अजाब इलाही होगा। जिस चीज़ को देख सकेंगे वो दोजख होगी और जहन्नुम होगा। क्यों? इसलिए कि ये वही लोग हैं जो दुनिया में ना इमाम बाड़ों को देख सकते थे, ना मस्जिदों को देख सकते थे, ना कुरान को देख सकते थे, ना नेकियों को देख सकते थे, लेकिन जिस चीज़ को देख सकते थे वो फसाद के मराकिस थे और गुनाहों की जगह थी। लिहाजा क़यामत में ये दोजख को देख सकेंगे लेकिन जन्नत को नहीं देख सकेंगे। सलावत पढ़ दीजिए एक मरतबा। हमारे छठे इमाम फरमाते एक मकाम पर, अब देखिए मैं एक हिस्सा इसका सिर्फ अरबी में पढ़ूंगा और बाकी मैं तर्जुमा करूंगा। इमाम कहते हैं मन लम यदुल्लो खल्क समावात वल अर्स। अब इमाम हदीस में रिवायत के जरिए से कितनी गहराई में जाकर एक बात करते हैं। इमाम कहते हैं कि जिसको ये जमीनो आसमान की खिलकत नंबर वन, और चांद सूरज और सैयारों की गर्दिश, और मेरी अजीबो गरीब जो आयात हैं जिनको ये जो है रहनुमाई करने के काबिल ना हो, जो रहनुमाई करने के काबिल ना हो, यानी आगे इमाम फरमाते हैं अला अन्ना वरा अदालिक अमरुन, कि इन चीजों को देखकर लोगों को ये ना पता चले कि इससे मावरा एक हस्ती मौजूद है, यानी इस कायनात की खिलकत को हम देखें, जमीनों आसमानों को हम देखें, और फिर हम लैलो नहार की गर्दिश को हम देखें, हम चांद सूरज सितारों की गर्दिश को हम देखें, और जो अल्लाह ताला की अजीब व गरीब आयात हैं इस कायनात में हम उसको देखें, और उसके ज़रिए से हम ये ना समझ सकें कि इन तमाम गर्दिशों के पीछे एक और हस्ती मौजूद है, तो यही वो शख्स है जो क़यामत में अंधा उठाया जाएगा और नाबीना उठाया जाएगा। सलावत पढ़ दीजिए एक मरतबा। बस अजीज़ान मोहतरम, ये जो आखरत के हवाले से, जो सवाब के हवाले से, जो जजा व सज़ा के हवाले से जो हकीकी फ़लसफ़ा है उसको समझने की ज़रूरत है। कि अगर हम फ़र्ज़ करते हैं कि कोई भी नेक काम अंजाम देते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, हम मजालिस में आते हैं, तो हमारी तवज्जो इस पर होनी चाहिए। ये वो जिस्ट है और वो खुलासा है जो मैं आप तक लाना चाहता हूँ कि हमारी तवज्जो ये होनी चाहिए कि हम इन मजालिस से क्या लेकर उठ रहे हैं, और कौन शख्स हमें इन मजालिस में क्या दे रहा है। हमारी तवज्जो ये होनी चाहिए कि हमारे कल्ब और रूह पर इसका क्या असर हो रहा है। हमारी तवज्जो ये होनी चाहिए कि हमारी इसके ज़रिए से कितनी तरबियत हो रही है, और हम अपनी प्रोग्रेस को कितना मॉनिटर कर रहे हैं, हम कितना जो है अपने आप को डेवलप और रिफाइन करने में कामयाब हो सकें। अगर हम इसमें कामयाब हैं तो इसका मतलब यह है कि हमें सवाब में भी दिलचस्पी है, हमें रिवॉर्ड और अजर में भी दिलचस्पी है, इसलिए कि रिवॉर्ड और अजर का ताल्लुक जो है अल्लाह ताला उस अमल की तासीर में देखेगा। तो जितना ज़्यादा, अब हम जब यहाँ पर आते हैं तो एक कदम में और आगे बढ़ना चाहता हूँ, और उस एक दो सवाल जो आपकी तरफ से किए गए, उठाए गए, और आपने जो सवाल किया कल, मैं चाहता हूँ कि चंद थोड़ी देर, 5-10 मिनट जो मेरे पास हैं, मैं चाहता हूँ कि वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसीलिए मैंने कहा कि जितने आपके जहन में सवाल उठते हैं तो हम उसको एड्रेस करना चाहिए हमें। तो अगर आपके जहन में कोई सवाल हो, बहनों के, ख्वातीन के जहन में सवाल हो, तो वो सवाल जो है पूछ सकती हैं, कोई क्लैरिफिकेशन हो या कोई भी चीज़ हो। तो ये जब हम जन्नत की बात करते हैं, जब हम जहन्नुम की बात करते हैं, जब हम सवाब की बात करते हैं, तो एक मसला फिर वही है कि जिसकी तरफ मैं आना चाहता हूं, लेकिन कुरान की आयत पढ़कर मैं उस असल इशू की तरफ आना चाहता हूं कि कुरान ये कहता है लेमन खाफा मकामा रब ही, वो लोग के जो मकाम रब से खौफ खाते हैं, बहुत तवज्जो कीजिएगा, कुरान की आयत है कि जो लोग मकाम रब से खौफ खाते हैं और उनके लिए दो जन्नतें हैं। अब वो दो जन्नतों से क्या मुराद है, इंशाल्लाह वो किसी और मौके पर, लेकिन ये खौफ खाना किस चीज से है, ये मकाम परवरदिगार से खौफ खाना है। जब हमारे इमाम से किसी ने पूछा, हमारे छठे इमाम से किसी ने पूछा कि यबना रसूलल्लाह, अल्लाह ताला के मकाम से खौफ खाना, अब आप देखिए ये जहन्नुम से खौफ खाना नहीं है, ये दोजख से खौफ खाना नहीं है, ये मकाम परवरदिगार से खौफ खाना है। लिहाजा ये बहुत जरूरी है हमारे लिए कि हम इन लेवल्स को भी समझें, हम इन स्टेजेस को भी समझें। एक लेवल ये है कि हम जहन्नुम से खौफ की खातिर इबादत करते हैं और हम जन्नत की लालच में इबादत करते हैं, लेकिन कबल इसके कि मैं इस तरफ आऊं, कुरान देखें कितनी गहराई में जाकर ये बात करता है। कुरान ये कहता है कि मकाम परवरदिगार से खौफ खाना, जब किसी ने हमारे इमाम से पूछा कि यबना रसूलल्लाह, ये मकाम परवरदिगार से खौफ खाने का क्या मतलब है, तो इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा कि इसका मतलब ये है कि जब आप कोई अमल अंजाम देते हैं तो आपके जहन में ये होना चाहिए कि अल्लाह ताला आपको देख रहा है, तुम्हारे अमल को देख रहा है। इमाम ने ये नहीं कहा कि अगर तुम बुरा अमल अंजाम दोगे तो तुम्हें जहन्नुम में भेज दिया जाएगा, इमाम ये नहीं कह रहे हैं, इमाम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर तुम कोई बुरा अमल अंजाम देते हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम अल्लाह के हुजूर में हो, अल्लाह ताला की प्रेजेंस है, और अगर तुम अच्छा अमल अंजाम दे रहे हो तब भी तुम्हें पता होना चाहिए कि ये अल्लाह ताला के हुजूर में तुम ये काम जो है वो कर रहे हो। इसीलिए मौला कायनात एक मकाम पर फरमाते हैं कि मुझे तुमसे दो चीजों का खौफ है, दो चीजों का खौफ है कि आयत है कुरान की, अम्मा मन खाफा मकाम रब्बे व नहान नफ्स अनिल हवा, जो मकाम परवरदिगार से खौफ खाते हैं और हवाए नफ्स से अपने आप को रोकते हैं। तो अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं मुझे दो चीजों का तुम्हारे बारे में खौफ है। पहली चीज यह है कि तुम जो हो वो हवाए नफ्स की पैरवी करो, वर्ल्डली डिजायर्स, अपनी ख्वाहिश से नफ्स की पैरवी करो, और दूसरा खौफ यह है कि तुम्हारी लंबी और तवील आरजुएं तुम्हारे अंदर हों। यानी बहुत सी दफा जाहिर है कि आप कहेंगे कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो अच्छी चीज होती है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना अच्छी चीज होती है, लेकिन यह तूलुल अमल, लंबी और दराज आरजुएं, इसकी शिद्दत के साथ रिवायात में मजम्मत की गई है। इसकी क्या वजह है, देखें मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि जो मारिफ का दरिया हमारी आइम्मा की तालीमात में हमें नजर आता है, हम कदम कदम पे हमें इस्तफादा करना चाहिए। इमाम ये कहते हैं कि जब तुम हवाए नफ्स में मुब्तला होगे तो उसका नुकसान ये होगा कि ये चीज तुम्हें हक को समझने से दूर कर देगी। तुम कभी ये नहीं समझ सकते कि हक क्या है और बातिल क्या है, इसलिए कि तुम अपने नफ्स की परस्तिश कर रहे हो, और जब तुम आरजुएं तुम्हारी तवील होंगी तो उसके नतीजे में तुम अपनी आखिरत को फरामोश कर दोगे, तुम याद आखिरत को भुला दोगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं। तो खौफ के जो मरातिब हैं, खौफ के जो मराहिल हैं, उसमें से एक तो ये है कि हम जो है वो जहन्नुम से खौफ खाते हैं लिहाजा हम इबादत करते हैं, और इसके अलावा जो है वो हम जन्नत की लालच में, मौला कायनात फरमाते हैं कि परवरदिगारा मैं तेरी इबादत इसलिए नहीं करता कि मुझे जहन्नुम का खौफ है, मैं तेरी इबादत इसलिए नहीं करता कि मुझे जन्नत की लालच है, परवरदिगारा मैं इसलिए तेरी इबादत करता हूं कि तुझे लायक इबादत समझता हूं, इसलिए कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, मेरी इबादत तेरी जात के लिए है। इसीलिए मौला कायनात एक और मकाम पर, बहुत तवज्जो कीजिएगा, एक और मकाम पर आप फरमाते हैं कि इन लम युतवा इदिल्लाह अला मासियते ही, कि अगर अल्लाह ताला, बहुत तवज्जो कीजिएगा, अगर अल्लाह ताला जो है वो मासियत पर सजा ना भी देता, अगर वो गुनाहों के ऊपर सजा ना भी देता, तब भी यजब अल्ला योसा, तब भी मुझ पर वाजिब था कि मैं अल्लाह की नाफरमानी ना करूं, तब भी मैं इबादत करता रहूं। अब आप दो मिनट के लिए हम सोचें, अगर हम अपने बारे में और मौलाए कायनात के बारे में, कि जो हमारा डिस्टेंस है अमीरुल मोमिनीन से, जबकि हम ज्यारत में पढ़ते हैं अस्सलाम अलैका या मीजान अल आमाल, सलाम हो उस पर जो हमारे आमाल को मेजर करने का पैमाना है। تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نماز علی کی نماز کے ساتھ پرکھی جائے گی، ہمارا روزہ علی کے روزے کے ساتھ پرکھا جائے گا۔ تو یہ کہنے کے بعد امیر المومنین جو بات فرماتے ہیں، اور ہم دو منٹ کے لیے سوچیں کہ اگر واقعاً اگر آج ہمیں پتہ چل جائے کہ جہنم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، عذاب نام کی کوئی چیز نہیں ہے، پنشمنٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور جنت نام کی بھی کوئی چیز نہیں ہے، تو کیا ہم واقعاً مسلمان رہنا پسند کریں گے؟ کیا ہم واقعاً عبادت کریں گے؟ کیا ہم واقعاً نماز پڑھیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ امیر المومنین بالکل برعکس کہتے ہیں کہ پروردگارہ، اگر ان چیزوں پر تو عذاب نہ بھی دیتا تب بھی میری عبادت میں کوئی فرق نہ آتا۔ اور پھر آگے چل کے آپ فرماتے ہیں کہ شکرن لنعمہی، اور کیوں میں ایسا کرتا؟ اس لیے کہ تیری نعمتوں کے شکر کا تقاضا یہ ہے کہ میں تیری اسی طرح عبادت کرتا رہوں، چاہے کوئی جنت ہو یا جہنم نہ ہو۔ صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ بس عزیزان محترم، تو اصل چیز جب ہم اللہ تعالیٰ کی خشیت کی بات کرتے ہیں، پہلی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، امام صادق علیہ السلام نے کہا کہ صلوات پڑھ دیا کہ کیفیت عمل جو ہے وہ دو چیزیں ہونی چاہیے، ایک خشیت اللہ اور ایک جو ہے وہ خالص نیت اور النیت الصادقہ۔ تو خشیت اللہ کا میں نے وعدہ کیا، میں اسی کو اس ضمن میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں خوف جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے خوف، یہ ہمارے بھائی نے مجھ سے سوال کیا کہ یہ کیا مطلب اس کا اللہ تعالیٰ سے خوف کھانے کا؟ اللہ تعالیٰ سے خوف نہیں کھاتے ہم، ہمیں خوف، بہت توجہ کیجئے گا، اللہ تعالیٰ سے خوف نہیں ہے۔ یہ جو خوف خدا ہے اس کا کیا مطلب ہے، ہمارا کوسچن یہ ہے۔ تو خوف اللہ سے نہیں ہے، ہمیں خوف اپنے آپ سے ہے، اپنے اعمال سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عدالت سے ہمیں خوف ہے۔ جب ایک طالب علم یہ کہتا ہے کہ مجھے اس معلم سے خوف ہے، مجھے اس ٹیچر سے خوف ہے، تو کیا ٹیچر جو ہے وہ ڈرانے والا ہے؟ کیا وہ ٹیچر جو ہے وہ خوف زدہ کرنے والا ہے؟ کیا وہ ٹیچر جو ہے وہ اخلاقی لحاظ سے ایسا ہے کہ جس سے ڈرنا چاہیے؟ نہیں، وہ طالب علم دراصل اپنی انکمپیٹنسی کا اس کو خوف ہے کہ اگر میں نہ پڑھا تو پھر مجھے جو ہے وہ امتحان میں نمبر نہیں ملیں گے، اس لیے کہ عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ ٹیچر جو ہے وہ مجھے فیل کر دے۔ تو اسی طریقے سے جب ہم اللہ تعالیٰ سے خوف کھاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے خوف کھانے کا مطلب یہ ہے ہم اپنے آپ سے خوف کھاتے ہیں، اپنے اعمال سے خوف کھاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہم عدل الہی سے خوف کھاتے ہیں۔ یہ خوف کا ایک لیول ہے، اور ایک بڑا ہی امپورٹنٹ لیول کہ جس کی طرف جیسے مولا کائنات اشارہ کرتے ہیں، جس کی طرف قرآن کی یہ آیت اشارہ کرتی ہے کہ من خاف مقام ربے۔ اب دیکھیں خوف کا ایک اور لیول ہے جو بہت ہی توجہ طلب ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کبھی کسی سے خوف اس لیے نہیں کھاتے کہ وہ سزا دے گا، بلکہ اس کی بزرگی کی وجہ سے، بلکہ اس کی عظمت کی وجہ سے، بلکہ اس کے احترام کی وجہ سے۔ اگر آپ کسی ہستی کو احترام دیتے ہیں، اگر کسی کی عظمت کے قائل ہیں، اگر کسی کی میجسٹی کے قائل ہیں، تو پھر آپ اس کے سامنے آپ کو یہ شرم محسوس ہوگی کہ آپ کوئی برا کام کریں۔ اگر آپ بچہ جو ہے وہ فرض کرتے ہیں کہ اس کا باپ سامنے ہے، تو باپ جب سامنے ہوتا ہے، والدین سامنے ہوتے ہیں، حتیٰ اگر والدین پنش نہ بھی کریں، اگر والدین سزا نہ بھی دیں، تب بھی وہ بچہ اس احترام کی خاطر، اس عظمت کی خاطر، اس بزرگی کی خاطر اس کام کو انجام نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے خوف کھانے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت کی معرفت رکھتے ہیں، جب ہم اللہ تعالیٰ کی بزرگی کو دیکھتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کو دیکھتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں، اور اللہ کے مقابلے میں اپنی کم مائکی کو دیکھتے ہیں، اپنے حقیر ہونے کو دیکھتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں جو چیز ہمارے قلب کو متاثر کرتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں خوف۔ سلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ تو یہ وہ خوف کا لیول جو ہے، اس کے لیے اس معرفت کی ضرورت ہے۔ اور میں کہوں گا کہ کربلا کے میدان میں ہمیں امام حسین علیہ السلام نے جو قدم قدم پر جو آپ نے درس دیا، وہ ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ خوف خدا وہاں کہیں نہ جہنم کا تصور تھا، نہ جنت کا تصور تھا، بلکہ ہمیں واقعاً جو ہے وہ صرف اور صرف تمام شہداء کو آپ دیکھ لیں، امام حسین علیہ السلام کو دیکھ لیں، کہ صرف اور صرف اللہ کی عظمت اور اللہ سے محبت کے نتیجے میں ہمیں وہ سارے کربلا کا واقعہ ہمیں وہاں پر جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ بس عزیزان محترم، میں آپ کی زحمتوں کو تمام کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اور بہت سے موضوعات پر مجھے بات کرنی ہے۔ کربلا کے میدان میں ہم جن قربانیوں کو دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی بھائی کے سامنے قربان ہو رہا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بیٹا باپ کے سامنے قربان ہو رہا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بیٹا اپنی بوڑھی ماں کے سامنے قربان ہو رہا ہے۔ یہ قربانیوں کے مناظر ہمیں نظر آتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ ایک شیر خوار بچہ جب اس کو قتل کیا جاتا ہے تو اس کا باپ وہاں پر موجود ہے، لیکن عزادارو دو بچے ایسے بھی ہیں کہ جو فرات کے کنارے جنہیں بے دردی سے قتل کیا جاتا ہے لیکن ان کے سامنے کوئی بھی نہیں ہے اور وہ تن تنہا ہیں۔ عزادارو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہم ان دو بچوں کی بات کر رہے ہیں جو مسلم کے بچے ہیں، کہ جن کے سامنے یہ قاتل اور حارث کھڑا ہے اور ان بچوں کے سر قلم کرنا چاہتا ہے۔ عزادارو یہ بچے وہ بچے ہیں جو ایک سال تک اس سخت ترین قید سے وہ رہائی پا کر نکلے ہیں، کہ ابن زیاد ملعون یہ کہتا ہے کہ جب ان کو زندان میں ڈال رہا تھا، جب ان کو قید کر رہا تھا تو کہا تھا کہ ان کو اس طرح سے جیل میں رکھو، قید میں رکھو کہ نہ ان کو ٹھنڈا پانی دینا اور نہ ان کو کھانے کے لیے کچھ دینا۔ یہ بچے اس طرح سے، انہوں نے ایک سال، ان بچوں نے، معصوم بچوں نے، 6 اور 7 سال کے بچوں نے ایک سال اس طرح جیل میں گزارا کہ دن کو یہ روزے رکھتے تھے اور رات کو ان کو بڑا معمولی سا کھانا جو ہے ملتا تھا۔ یہ بچے جب جیل سے باہر نکلتے ہیں تو انہوں نے کربلا کا واقعہ بھی دیکھا ہے، اور پھر وہ وقت آتا ہے جب دریائے فرات کے کنارے یہ ظالم جو ہے وہاں پر کھڑا ہے۔ بس عزاداروں، میں شارٹ کرنا چاہتا ہوں، صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان معصوم بچوں کی اس التجا کو جب انسان دیکھتا ہے، اس التماس کو جب انسان دیکھتا ہے تو انسان کا دل جو ہے وہ دہل جاتا ہے۔ یہ بچے اس قاتل سے یہ التماس کرتے ہیں، ہم تجھ سے یہ التماس کرتے ہیں، ہم تجھ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ تو ہمیں قتل نہ کر بلکہ تو ہمیں بازار میں جا کر بیچ دے، اور اس کے ذریعے سے تجھے جو پیسے ملے شاید تجھے اس کا فائدہ پہنچے۔ یہ قاتل کہتا ہے کہ میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا، تو کہا کہ اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو پھر میں، ہم تجھ سے یہ چاہتے ہیں کہ تو ہماری رسول سے قرابت کا کچھ لحاظ کر لے۔ اس نے کہا کہ مجھے رسول کی قرابت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس کے بعد ان بچوں نے رو رو کے اس ظالم سے یہ کہا کہ اگر تجھے ہماری قرابت کا خیال نہیں ہے تو تو ہمیں قتل نہ کر اور تو ہمیں زندہ لے کر چلا جا، تو زندہ ابن زیاد کے پاس لے جائے، جو بھی وہ ہمارے بارے میں فیصلہ کرے۔ عزادارو جب اس نے اس کو بھی نہ مانا تو بچوں نے تڑپ کر کہا تو ہم تجھ سے یہ کہتے ہیں کہ تو کم سے کم ہماری کمسنی پر تھوڑا سا رحم کر، ہماری کمسنی کو دیکھ کے ہمیں معاف کر دے۔ جب قاتل نے یہ بھی نہ مانا تو پھر ان بچوں نے، آپ کو تاریخ اسلام میں کہیں ایسی جگہ نہیں ملے گی کہ جہاں پر اس قسم کا ظلم و ستم ہو رہا ہو، اور بچوں نے آخری بات یہ کہی ہو کہ ہمیں صرف نماز پڑھنے کی اجازت دے دیں۔ عزاداروں، نماز پڑھنے کی ان بچوں کو اجازت دی گئی، اور بچوں نے جب اپنا سجدہ آخر کیا تو سجدہ آخر میں انہوں نے کہا کہ یا حیو یا قیوم یا حلیم یا احکم الحاکمین احکم بیننا و بینہوں، اے مالک تو ہماری بے کسی کو دیکھ رہا ہے، اے مالک تو جانتا ہے کہ باپ کا سایہ ہمارے سر پر نہیں ہے، اے مالک تو جانتا ہے کہ کوئی ہماری مدد کرنے والا نہیں ہے، اے مالک تو جانتا ہے کہ ہمیں موت کا ڈر نہیں ہے، لیکن اے مالک ایسا ظلم بھی تو کہیں نہیں کیا جاتا، اے مالک اس ظلم کی انتہا بھی تو کہیں نہیں دیکھی جاتی۔ بس عزادارو، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس ظالم نے ان بچوں کے سر کو قلم کیا، جب آگے بڑھ رہا تھا تو بڑے نے بڑے کو روکنے کے لیے بچہ آگے بڑھا کہ پہلے میرے سر کو قلم کر۔ اس طرح سے ان دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال لی، لیکن اس ظالم نے سر تن سے جدا کیے، جسموں کو پانی میں ڈال دیا۔ اور عزاداروں میں صرف یہ کہوں گا کہ مولا حسین جب آپ کربلا میں موجود تھے، جب عباس گھوڑے سے گر رہے تھے اور آپ کو بلا رہے تھے تو آپ کربلا میں موجود تھے، جب قاسم گھوڑے سے گر رہے تھے آپ کربلا میں موجود تھے، جب علی اکبر گھوڑے سے گر رہے تھے آپ کربلا میں موجود تھے۔ میں کہوں گا مولا حسین آج فرات کے کنارے دو بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ينقلبون۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، انك مجيب الدعوات، انك على كل شيء قدير، برحمتك يا ارحم